The Midlands biggest station, radio station. Cyprus Radio, Cyprus Radio.
Right, it's 3 minutes after 6 o'clock. It is your Wednesday evening, and away from our regular schedule, we're doing this special program. As you know, we've got a pandemic going on with coronavirus, so we're bringing you regular updates here on Cyprus Radio. So this segment now, for the next couple of hours, will be hosted by myself in English. That's Raj Badin, and of course, Umber from the Mid-Morning Show is also in the studio with me as well. You can also check us out live on our Facebook page as well. We are live there, so you can say hi to us there. If you've got any questions, you can send them to us, all right? studio@cyprusradio.com, or you can WhatsApp us in the studio on 07 564 984 152, all right? And we are going to be joined by special guests throughout this evening with this special broadcast. After 7 o'clock, we'll be joined by immigration advisor Harjar Bungle, who will be live with us, giving us advice on what's going on with the travel situation. And of course, we know lots going on with the visas, India visas that have been restricted, and of course, travel has been restricted from the UK. Also, we've got our very own resident GP in the studio. Of course, comes in every Monday morning. So good to see him in the evening here, Dr. Rajiv Wadhwa, who is in the studio. Rajiv, how are you doing?
I'm very good. Thank
you. It's great to see you. I know under the circumstances, we've got lots going on. So really appreciate your time during these very difficult times.
No, my pleasure. Anytime.
Thank you.
For the radio, and also more importantly for the public, anytime.
Thank you very much. And also in the studio, we've got Professor Mo Roshan. So good to see you as well under these circumstances. How are you doing?
I'm doing fine. Thank you for having me.
Thank you.
Thank you to Rajiv for inviting me over.
So, Rajiv, shall we start with the kind of the background of coronavirus? Because I know this is a special program. I know there's a lot of people that will be listening back to this segment as well. Tell us, firstly, a little bit about coronavirus and what we can do to kind of avoid the spread of it.
Yes. So, Raj, coronavirus is, we talked about it on a Monday morning as well. Is coronavirus itself is not a new virus. We know about it for many, many years. It's one of the viruses that causes flu, cold-like symptoms, like a flu-like illness. What we are worried about these days over the last few months is a special strain of coronavirus called novel coronavirus 19, COVID-19 in short. This is a new strain relatively. We only know about it for a short period of time, and that's what is causing the problem. So viruses, as we know, very small organisms. They are everywhere. They're wherever you go, there's some sort of virus is always there. Some of them sometime get into our body and cause infections. So that's what this virus does. All the coughs and colds and influenza, etc., that we get, which we're very familiar with, everybody has them time to time. They are mostly because of the viral illnesses, because mm-hmm. of the viruses. This one is difficult because it's a new one. We don't know about it very much. Usually what happens is when the virus is there, our bodies get immune to it. That is, we develop immunity to it. We develop fighting power for against it. So even though it's there, it comes inside our body. Body fights it and makes it go away. We don't get ill. Or we have a relatively milder illness like a common cold or a flu type illness. With this one, because it's relatively new, like I said, we don't know much about it. And also, we don't have any immunity to it because it's new. We've never been exposed to it. So whoever is being exposed to it now is probably being exposed for the first time. So body doesn't know what to do with it. And that's why the risks are much more.
Yes, of course.
just to add to that, thank you very much, Rajiv. I think that's absolutely right. So as Rajiv said earlier, the coronavirus, or the COVID-19 virus, is a coronavirus. They're called coronaviruses because of the shape that they have. Mm. They look like one of those bouncy balls with little tags attached to it. And in fact, we have had exposure to coronaviruses in the past. So the SARS virus in China, I think almost 10, 15 years ago, which affected people's lungs quite a lot, was also a coronavirus. There was a Middle Eastern SARS virus, which is also a coronavirus. And these are thought to be zoological viruses, so they're actually transmitted from animals to mammals. And I think when they've worked out the DNA of this present COVID-19 virus, they've found it probably comes from a cat to a human being. But there have been other cases. So I don't want people to suddenly start thinking, you know, what happened and do I now avoid cats or something? Because hand, foot and mouth disease also came from animals to us. As Rajiv quite rightly said, the hardest thing about this virus, because it's related to the influenza family of viruses, but the hardest thing about this virus is the fact that it causes lung disease a lot more than the flu virus does. Mm. And that's a major problem. So just to put it into context, every year the flu virus actually kills 8,000 people or so in this country. People don't realize that, but there's quite a large number of people. Mm-hmm. This virus, if it was going to be left unchecked by the research that's just come out from Imperial College in London, would have killed about 500,000 people.
Right.
So if it had been left unchecked altogether. Mm-hmm. So the measures that we're seeing now are all to do with containing the virus in a non-pharmacological way, which is not using drugs, because we don't have a drug for it. So what we're doing now is actually trying to fight against this virus without any medication. And that's the hardest bit about this
virus.
That's right.
I mean, in fact, that is one of the questions that is coming from the listeners, which we will touch upon, because there's quite a few questions that are coming in. But like I also said, just kind of break away, from you, Doctor, and of course the Professor, that we're going to be focusing on a lot of the Hindi elements, because there's a lot of the elderly and also the people that are high risk that don't get the information and not probably got access to the internet and not got access to radio or, you know, TV. So we're trying to help them here on Subbish Radio with this special broadcast. So I'm going to bring Umber from the Mid-Morning Show, who has been talking to Dr. Rajiv Wadhwa on a Monday here on Subbish Radio. But we're going to go a little bit more detail today with a lot of your questions that are coming in. So Umber is in the studio with me. Umber?
Thank you very much, Raj. And ठीक है राजीव जी अब आ गए हैं वापस हम लोग अपने हिंदी के फ्लो में थैंक्स टू राज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड जैसा राज ने कहा है कि हमें हिंदी में उन लोगों के लिए बात करनी है जिनको इंटरनेट की या तो एक्सेस नहीं है जिनके पास इंटरनेट की या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते
जी,
हैं
जी.
तो उनके लिए हमें हिंदी में बात करनी है हिंदी में जानकारी देनी है तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से आमतौर पर करते हैं कि अब तक तो अंग्रेजी में आपने बात की है सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राज को एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहूंगी कि राज थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एट दिस टाइम एंड दिस आवर और अब ये जो कोरोना वायरस COVID-19
जी
तो ये जो है चीज क्या है इसके लक्षण क्या हैं
जी
उससे हम शुरुआत करते हैं और आई थिंक थोड़ा बीच में अगर हम ब्रेक करके चलें बारी बारी मैं आपसे सवाल पूछूं तो उस हिसाब से अगर हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ें और आपके साथ प्रोफेसर मोरोशन भी हैं तो अच्छा लग रहा है कि चलिए आज एक पूरा जैसे हमने वो कर लिया है तो ये जानकारी हमारे लिसनर के लिए दी जाए सबरस रेडियो के जरिए तो वहीं से शुरू करते हैं कि ये चीज क्या है
अच्छा हमारे सुनने वालों को नमस्ते जय श्री कृष्णा सलाम अलैकुम सत श्री अकाल और ये जो हम बात कर रहे थे वो कोरोना वायरस की बात कर रहे थे
जी.
अभी तक तो मेरे ख्याल में इस देश में सबको मालूम होगा कि एक वायरस है जिससे बीमारियां फैल रही है
जी.
और ये बीमारियां बड़ी खास बीमारी है जो जो लोगों को बहुत बीमार कर सकती है
जी.
और बहुत से लोग गुजर भी गए इस वायरस की वजह से ये वायरस जो है वो हमारे लिए तो नया है लेकिन जो फैमिली से आया है जो वायरस की फैमिली से जो आया है वो
जी.
हम पहले भी देख चुके हैं क्योंकि चाइना में जब सार्स की लंग डिजीज हुई थी 10 साल पहले मेरे ख्याल में
जी.
और मिडल ईस्ट में भी हुआ था निमोनिया जैसी बहुत बीमारी थी उसको भी मिडल ईस्ट सार्स वायरस कहते थे तो ये ऐसा ही वायरस है और इस वायरस वो फ्लू की फैमिली की जैसा ही वायरस है मतलब आपको जुकाम होता है पहले टेम्परेचर होता है जिस्म में दर्द होता है हेडेक होता है और बहुत से लोग अगर जो 10 लोगों को ये इन्फेक्शन हो तो 8 लोग तो मेरे ख्याल में ठीक से गुजर जाएंगे मतलब ठीक हो जाएंगे इस वायरस से लेकिन जो 2 बाकी है वो ज्यादा बीमार होते हैं इस वायरस से जो फ्लू में है इतनी ज्यादा बीमारी नहीं फैलती इस वायरस में
तो ये वायरस जो है एक चीज जैसा कि लोगों को ये भी है कि ये इतना खतरनाक आखिर क्यों लग रहा है क्योंकि इसको जिस तरह से महामारी घोषित कर दिया है तो उसके चलते लोगों को सेल्फ आइसोलेट करने के लिए भी कहा जाता है कि वो खुद को और लोगों से जो है दूर रख लें, जब तक जरूरी ना हो अपने घरों से बाहर ना जाएं। जो लोग काम पर भी जा रहे हैं, कई जगह पर हम सुन रहे हैं कि दो दो हफ्तों के लिए काम काज से जो है लोगों को घर बैठने की सलाह दे दी गई है, और कुछ जगह पर उनसे ऑलरेडी कह दिया गया है कि वो घर बैठें। कुछ लोगों से ये कहा जा रहा है कि वो लोग घर से काम करें, वर्क फ्रॉम होम। सो इन सारी चीजों के चलते लोग ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि इसके लक्षण क्या है, क्योंकि खांसी और छींकना ये सर्दी जुकाम से भी जो है मिलते जुलते लक्षण हैं। तो ये दोनों चीजें अलग कैसे होती हैं, इनमें फर्क जो है कैसे लोग करें?
मतलब जो जो के जैसे किसी को फ्लू हुआ हो या कम मुश्किल है थोड़ा फर्क करने में, लेकिन अगर जो आपको बुखार हो जैसे टेम्परेचर हो 37.8 से ज्यादा
जी,
या फिर ऐसी खांसी हो जो चलती रहती है दो तीन दिन के लिए और सारे दिन रहती है
जी,
और खास करके अगर जो आपको सांस की बीमारी भी होती है इससे, मतलब आपको सांस की तकलीफ होती है, तो ये तीनों चीजें साथ में मिला के आपको ये दिखा देती है कि ये वायरस शायद ये आम फ्लू का वायरस नहीं है।
अच्छा,
और अभी फ्लू का वायरस थोड़ा कम भी हो गया है सीजन, तो मतलब अगर जो किसी को बुखार हो या खांसी हो अभी, तो हम यही सोचते हैं कि ये कोविड हो सकता है। तो ऐसा चांस मत लेके मुझे खांसी है, शायद कुछ और ही होगा। जुकाम हो बुखार नहीं हो तो कुछ अलग बात है, वो ठीक है, मतलब थोड़ा सा पानी नाक से बह रहा हो और बुखार भी ना हो, खांसी ना हो, सांस ठीक है, तो फिर आपको फिक्र करने की बात नहीं है। वैसे हम जो बात करें, अभी आपने कहा आइसोलेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो हम सब बात करेंगे
जी,
क्योंकि हमारे पास दवा नहीं है इस वायरस के लिए
जी,
तो ये चीजें जरूरी है कि ये वायरस इतना जोर से फैले मत जितना चाइना में फैला था
जी,
यहाँ भी फैलने लगा है, तो वो हमें रोकना है, और क्योंकि दवा नहीं है तो जरूरी है कि लोग अपने आप को साफ रखे, हाथ वॉश करे और दूसरे लोगों से दूर रहे।
जी, तो अंबर जी इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ थोड़ा सा कि ये अभी हम कह नहीं सकते हैं कि जिसको भी बुखार हुआ है या खांसी हो रही है तो वो 100% उसको कोरोना वायरस या कोविड-19 की बीमारी हो गई है, लेकिन इसका कोई टेस्ट भी नहीं है। टेस्ट है लेकिन वो आम, अगर आप घर पर हैं और आप बहुत बीमार नहीं हैं तो इसका कोई टेस्ट नहीं है आपके लिए। तो हमें ये मान कर चलना है कि ये कोविड-19 या कोरोना वायरस हो सकता है, और सारे प्रिकॉशन लेने हैं कि चाहे भले ही ये कोल्ड फ्लू की भी बीमारी हो, हमें ये मान कर चलना है कि ऐसे बिहेव करना है कि जैसे कि ये कोविड-19 है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी ही बात नहीं है। आप अगर हट्टे कट्टे हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, आपके लिए तो ये आम कोल्ड फ्लू जैसी बीमारी है, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, एक दो हफ्ते में ये ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि आप उसे आगे कितने लोगों में पहुंचाते हैं, और फिर जिसको आप स्प्रेड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उनमें से अगर कोई कमजोर है, कोई बीमार है, बुजुर्ग है, या उसको और कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसकी जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता है बॉडी की बीमारी से लड़ने की, वो कम है, तो उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपने यही मानकर चलना है कि अगर खांसी आ रही है, बुखार है, तो ये मान लीजिए कि चेक तो नहीं होना है, हो सकता है हो सकता है ना हो, बट एज्यूम करके चले कि ये कोविड-19 ही है और हमें उसके प्रिकॉशंस लेने हैं।
Okay.
So, Dr. Rajiv, I just want to ask you about the painkillers, because that's been in the news for the last couple of days. If you could just let us know in Hindi as well, paracetamol, ibuprofen, what's the best kind of, I don't know, treatment for it?
तो पैरासीटामोल आमतौर पर हम लोग कहते हैं, कभी भी किसी को भी कोई दर्द है, कोई सर्दी खांसी बुखार वगैरह है, उनको खांसी तो नहीं बुखार और दर्द वगैरह के लिए, तो हमेशा ये कहा जाता है कि सलाह दी जाती है कि आप पहले पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें, जो एडल्ट्स के लिए इसकी डोज है 2 टैबलेट्स दिन में 4 बार, 8 गोली रोज मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लेनी है, लेकिन अगर दर्द और बुखार है तो 8 से कम भी ना लें, पूरी 8 लें। जब इससे आराम नहीं मिलता है आपको किसी भी तरह के दर्द में, तब हम लोग सलाह देते हैं कि आप आईबीप्रोफेन भी ले सकते हैं। आईबीप्रोफेन बहुत से लोगों को नहीं लेनी चाहिए जिनको पेट की गैस की तकलीफ है, इनडाइजेशन है, पेट में कोई ब्लीडिंग वगैरह हुई है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको तो लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो नई थोड़ी सी रिसर्च आ रही है, और बिल्कुल कन्फर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आ रही है कि जिनको ये कोविड-19 या कोरोना वायरस वाली बीमारी है, उनके लिए आईबुप्रोफेन उतनी अच्छी नहीं है, वो उनको नुकसान कर सकती है। तो सलाह यही दी जा रही है कि बहुत से लोग मैंने देखा है कि जब बुखार या और कोई दर्द वगैरह होता है तो वो पहले एज ए फर्स्ट लाइन आईबीप्रोफेन लेते हैं, पैरासीटामोल नहीं लेते हैं। तो इस बार
इस समय जब आपको अगर ये लगता है कि ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी है, बुखार है, खांसी है, तो आपको आइबुप्रोफेन नहीं लेनी है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि ये रिसर्च कुछ रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं कि इससे आपको नुकसान हो सकता है।
तो लेकिन ये भी जरूरी है, और आपके पास बिल्कुल सही है, अगर जो आपको फ्लू जैसी बीमारी है अभी तो पैरासीटामोल अच्छी रहती है, आइबुप्रोफेन मत लीजिए। लेकिन अगर जो आपकी बीमारी के लिए डॉक्टरों ने पहले से आपको आइबुप्रोफेन पे रखा है, जैसे कि आपको दर्द होता है नीज में या आर्थराइटिस हो या ऐसी कोई बीमारी हो जिसकी वजह से आपको आइबुप्रोफेन या नेप्रोसिन या प्रिस्क्राइब की गई है, तो फिर उसको बंद मत करना। ये तो सिर्फ कह रहे कि अगर जो आपको ये कोविड वायरस के सिम्टम्स जो हो, बुखार हो, सर में दर्द हो, खांसी हो, तो फिर इस बीमारी के लिए पैरासीटामोल अच्छी है।
लेकिन अगर आप आइबुप्रोफेन या और इस तरह की जो नेप्रोक्सिन है और कुछ लोग और भी दवाइयां हैं, डिक्लोफेनाक तो बहुत कम लोग लेते हैं लेकिन कुछ लोग शायद लेते हों, तो वो अगर आप ले रहे हैं तो एक तो आप वो लेते रहें क्योंकि आप उसका इससे कोई मतलब नहीं है, और दूसरे एक ये थोड़ी सी अफवाह फैली हुई है कि आइबुप्रोफेन खाने से कोरोना वायरस हो जाएगा। बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल गलत है कि आइबुप्रोफेन खाने से कोरोना वायरस नहीं होने वाला है। जिनको अगर कोरोना वायरस की बीमारी हुई है वो अगर आइबुप्रोफेन खाते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। जी,
मतलब समरी में अगर जो आपको जुकाम हो, बुखार हो, खांसी हो, तो बेहतर है कि आप पैरासीटामोल लें। लेकिन अगर जो आप ऐसे मरीज हो जिसको पहले से आइबुप्रोफेन या नेप्रोसिन दी गई हो, तो फिर वो चालू रखिए और आप 111 को पूछ सकते हैं कि आप और क्या ले सकते हैं।
ओके, और हम जिस तरह से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिलसिलेवार चलने की बजाय थोड़ा बहुत बीच बीच में भी बात होती रहे तो ठीक है, तो सेल्फ आइसोलेशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कई लिसनर्स जैसे कि काम पर हैं, इन बिटवीन वो भी ब्रेक में भी सुनते हैं, तो थोड़ा सा सेल्फ आइसोलेशन के बारे में अगर बताया जाए।
जी, जब ये बीमारी पहले शुरू हुई थी तो गवर्नमेंट ने सोचा था कि शायद किसी को बुखार हो या खांसी हो तो वो अपने आप को घर पे रख दे, तो उसे हम आइसोलेशन कह रहे थे, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास सिम्टम्स हो। लेकिन अब सोच रहे कि उसके बावजूद ये फैल रही है बीमारी, तो उन्होंने फिर हाइटन कर दिया है। मतलब अब कह रहे हैं कि अगर जो आपको खांसी हो या घर पे किसी को खांसी हो या घर पे किसी को बुखार हो, तो भी आप घर पे रहिए और खुद को सेल्फ आइसोलेट कर दीजिए। और सेल्फ आइसोलेट का मतलब ये कि आप किसी और को मिले नहीं, बाहर नहीं जाइए, काम पे नहीं जाइए, घर पे ही बैठे और जो जिसको बीमारी है उसके साथ ही रहिए, लेकिन उनसे भी थोड़े 3-4 फीट अलग रहिए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को भी हो गई, उसकी बीवी को हो गया था ये कोविड, तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया था, तब से अपने आप को वो क्वारंटीन कर दिया था कि वो खुद घर पे रहेगी। तब वो सलाह नहीं थी, तब वो कह रहे थे कि अगर जो घर पे किसी को कफ हो तो आप बाहर जा सकते, लेकिन अभी ये नहीं है। अगर जो अभी किसी को बुखार भी हो घर पे, खांसी भी हो, तो आप घर पे रहिए, बाहर मत जाइए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो आप 70 ईयर्स से ज्यादा हो या फिर आपको ऐसी बीमारी हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, अस्थमा हो, तो फिर आप खुद घर पे ही रहिए, बीमार हो या ना हो, कोई घर पे बीमार हो या ना हो, आप घर पे ही रहिए। और आप ये जो है वो आप खुद की हिफाजत के लिए है, पॉपुलेशन की हिफाजत के लिए नहीं है। अच्छा, सो आप 70 से ज्यादा हो, जैसे मेरे ससुर जी है, वो शायद अभी सुन रही है, लेकिन वो 70 से ज्यादा है
जी।
हमने उनको कहा कि देखो आप बाहर मत जाइए, अगर जो शॉपिंग के लिए जाना हो, जो एक घंटे के लिए अभी शॉपिंग हो आपको जाना, तो ठीक है, क्योंकि वो है, फिट है, वेल है, लेकिन फिर भी हमने उनको बताया कि आप घर पे रहिए। वो कभी कभी सोचते हैं कि आप मुझे भी फिक्र है कि मैं अगर जो आपके पास घर आ जाऊँ मैं शायद आपको वायरस दे दूंगा। मैं कहा ये ऐसी बात नहीं है, ये आपकी हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए नहीं है। अच्छा, तो वो इम्पोर्टेंट है समझना।
Okay.
70 से ज्यादा हो कोई
तो ये जो सेल्फ आइसोलेशन है, अगर एक लाइन में हम अपने लिसनर्स को बता दें, जो अब तक तो खैर अच्छी तरह से जानते ही हैं सभी के, सेल्फ आइसोलेशन यानी खुद को अलग रखना जो है बाकी की दुनिया से, बाकी लोगों से खुद को अलग रखना, और ये 14 दिन का जो पीरियड होता है, तो डॉक्टर साहब मैं आप दोनों से ही बल्कि जानना चाहूंगी, 14 दिन का जो ये कहा जाता है सेल्फ आइसोलेशन टाइम है, ब्रेक का भी वक्त हो रहा है तो इस सवाल का जवाब पहले ले लेते हैं फिर ब्रेक की तरफ चलेंगे, तो ये 14 दिन के बाद क्या अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट सकता है इंसान?
जी बिल्कुल। तो इस दौरान जो है, जब आप सेल्फ आइसोलेशन में हैं, तो आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, काम पर नहीं जाना है, और फिर ये नहीं कि आप घर पर बैठे हैं तो अब हम बोर हो रहे हैं तो चलो पार्क में चले जाते हैं, मौसम धूप निकली हुई है, या हम वॉक पे चले जाते हैं, या हम जिम में चले जाते हैं, तो वो भी नहीं करना है। आपने घर के अंदर ही रहना है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इवन टैक्सी तक का इस्तेमाल नहीं करना है कहीं आने जाने के लिए। पहली बात तो आपको कहीं आना जाना चाहिए ही नहीं, लेकिन अगर मजबूरी में बहुत जाना पड़ रहा है तो आप अपनी पर्सनल कार से, अपनी गाड़ी से जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह का नहीं करें। और फिर ये भी नहीं कि अब हम घर पे हैं, हम बोर हो रहे हैं तो चलो सब दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, बैठ के बातचीत करेंगे, खाएंगे पिएंगे, वो भी आपने नहीं करना है। आपने अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को, फैमिली को बताना है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं, तो मेरे घर मत आइए। और अगर ये यहां तक कहा जाता है कि आप बाहर खाना लेने भी मत जाएं, आप दवा लेने भी मत जाएं, अगर आपको कोई दवा चाहिए तो आप केमिस्ट को फोन करें कि वो अगर डिलीवर कर सकते हैं आपके घर में, या आपके और फैमिली फ्रेंड्स पड़ोसी रिश्तेदार कोई आपको दे सकता है। और ये तक कहा जाता है अगर आपको कोई खाना देने या कोई सामान लेकर आपके यहाँ लेने आ रहा है तो आप दरवाजा तक मत खोलें, आप अंदर रहें, उनसे बोलें सामान बाहर रख दें, और फिर बाहर जाकर आप जब वो चले जाएं तो सामान कलेक्ट कर लें। इस हद तक अपने गार्डन में आप जा सकते हैं, गार्डन में आप जा सकते हैं और जाना चाहिए, आप बाहर निकलें, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करें। दूरी जो हम कहते हैं कि डिस्टेंसिंग, दो मीटर माने तीन कदम, थ्री स्टेप्स, तीन अच्छे स्टेप्स जो हैं, तीन कदम की दूरी आप सबसे बनाकर रखें। तो अगर आप किसी से बात करनी भी पड़ रही है तो आप 2 मीटर दूर से बात करें, तो उससे जो ट्रांसमिशन है कि आपकी बीमारी उन तक पहुंचे, उसमें कमी आती है थोड़ी सी।
जी, और जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, सोनास वगैरह जाते हैं, उनके लिए
नहीं, तो पहली बात है, जब राजीव, डॉक्टर राजीव जब बता रहे थे, वो दो लोगों के लिए, ये अगर जो आप खुद को खांसी हो, खुद को बुखार हो, तो फिर आप घर पे रहिए, लेकिन घर पे किसी और को भी खांसी हो या बुखार हो तो भी आप घर से बाहर मत जाइए।
पूरा
हाउस होल्ड को घर पे ही रहना है। अच्छा, 14 दिन की बात आपके ब्रेक के बाद हम करेंगे, लेकिन जिम और सोना, तो अगर जो आपको कोई सिम्टम्स हो या आपके घर वालों को कोई सिम्टम्स हो तो फिर आप घर से बाहर जा ही नहीं सकते। अच्छा, मेरे ख्याल में कि मैं जैसे मैंने बताया, 2-3 दिन के बाद ऐसा भी हो सकता है कि लोग कहेंगे कि देखो आप जिम की, जहां बहुत से लोग हैं, पार्टियां है या जिम है या स्कूल है, वहां मत जाइए। अच्छा,
या नहीं, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कई लोग सोचते हैं चलो यार काम पे तो जा नहीं रहे, कम से कम जिम तो चले जाएं।
बिल्कुल
बिल्कुल। और अगर जो अभी के लिए राय जो है वो, अगर जो आपको बीमारी नहीं है, मतलब आपको ना तो खांसी है, ना तो सांस की बीमारी है, या ना तो बुखार है, तो आप वो घर पे भी किसी को नहीं है तो आप जा सकते हैं अभी जिम में, लेकिन मेरे ख्याल में 2-3 दिन के बाद वो भी बदल जाएगा।
In the studio, as you've been hearing as well, you can see us live on Facebook Live. We've got Dr. Rajiv Wadhwa, our resident GP, who joins us every Monday on the mid-morning show, and also Professor Mo Roshan, who is live in the studio with us. Thank you so much, gents, for coming in. And in the next hour of the show, by the way, we'll be talking about immigration as well and travel advice that has been given. All right, so keep it right here. We're going to go back to the questions that are coming in. In fact, let's just take a break from the facts that we got here, but some of the questions that are coming in from the listeners. Dr. Rajiv, I just wanted to ask you this question just a little bit more about the places of worship. I mean, if you could talk about that, just to, you know, mandirs, gurdwaras, mosques, just tell us, is it safe? I know you mentioned public, you know, going out to certain places, but what about going to places of worship? Are they, you know, are they permitted at the moment?
So the guidance is for social distancing. So one is self-isolation. Self-isolation comes in jab आपको कोई बीमारी है या आपके घर में भी किसी को बीमारी है, तो आपके पूरे हाउस होल्ड में, घर में अगर 3 लोग हैं या 10 लोग भी हैं, एक को भी अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो कहा जाता है कि पूरे घर को फिर सेल्फ आइसोलेशन में रहना है 14 दिन तक के लिए। ये गाइडेंस पहले 7 दिन की थी, तो हम लोग जब सोमवार को मैं अंबर जी के साथ ये बातचीत कर रहा था तो मैंने कहा था कि 7 दिन के लिए, अब वो 14 दिन के लिए हो गया है, 14 डेज के लिए। लेकिन जिनको कोई ये सिम्टम नहीं है, ना उनको ना उनके किसी घर वालों को, उन्हें पता नहीं है, तो भी एडवाइस सोशल डिस्टेंसिंग की है कि जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो सलाह यही है कि वहां पर नहीं जाना चाहिए। अभी उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, लेकिन और देशों को देखते हुए, जैसा कि हमने देखा है चाइना में और अब पूरे यूरोप में, कि उसके ऊपर बिल्कुल ही बैन लगा दिया गया है कि जहां भी पब्स हैं, क्लब्स हैं, चर्चेज हैं और दूसरे जो ये पूजा पाठ के जगह हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जो भी हैं, तो वहाँ पर तो बिल्कुल बैन लगा हुआ है। यहाँ अभी ऐसा कोई बैन गवर्नमेंट ने नहीं लगाया है, लेकिन सलाह दी जाती है कि आप ना जाएं। मो बता रहे थे शायद मुस्लिम काउंसिल ने भी अनाउंस किया है,
कल ही इस्लामिक काउंसिल ने अनाउंस किया है कि अगर जो हो सके, सब मस्जिदों को उन्होंने राय दी है कि अगर जो हो सके तो फ्राइडे के प्रेयर्स के लिए अब लोगों को इकट्ठा न करें, कि लोगों को घर पे ही नमाज पढ़ने दे। और हिंदू एसोसिएशन ने भी वही कहा है और क्रिश्चियन एसोसिएशन ने भी वही कहा है। लेकिन एक और बात थी, जैसे हमने बताया, अगर जो आपको खांसी हो या बुखार हो तो आप तो बाहर नहीं जा सकते, घर पे किसी को बुखार हो या खांसी हो तो आप बाहर नहीं जा सकते। एक और भी ग्रुप है जिसको हमने मेंशन किया है, लेकिन अभी एक बार और मेंशन करें, अगर जो आपकी उम्र 70 से ज़्यादा हो या आपको कोई अस्थमा हो, हार्ट की बीमारी हो, लंग की बीमारी हो, तो ये लोग भी बाहर नहीं जा सकते अभी। उनको कहा गया है कि आप उनको आइसोलेट कर दें अपनी खुद की हिफाजत के लिए। और आम तौर पर जो लोग मस्जिद जाते हैं, जो मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वो लोग थोड़ी उम्र से ज़्यादा होते हैं और वो लोग शायद उनको कोई और भी बीमारी हो सकती है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर जो वो पहले तो घर पे रहे तो घर पे ही रहे, अगर जो बाहर जाना ही चाहते हैं तो जब वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहाँ भी जाए, चर्च में जाए, तो लोगों से दूर रहे, एटलीस्ट 6 feet दूर रहे, 2 meters दूर रहे। अच्छा, तो ये मुश्किल है करना, इसलिए कह रहे हैं कि आप घर पे ही रहे।
I just want to clarify one thing as well about the age now to do with elderly. It is 70 plus, right? Because there are some confusing signals we're getting about 60, 65, but is it 70?
If you are healthy, 70. If you are in the old, up to a few days ago, it was 60 if you have any other conditions. But actually now they're saying it doesn't matter how old you are. If you have any conditions like asthma, heart problems, hypertension,
type 1 diabetes
particularly, all sorts of type 2 and 1 diabetes.
Yeah. Pregnancy,
very good, yeah. Yep. So those people should really be staying at home now and self-isolating.
I was actually going to talk to you about pregnant women, because what is the official line on pregnant women? Can they still go to hospitals to get checkups? And what is
self-isolation, if somebody doesn't have any symptoms, allows you to go to hospital. It allows you to go shopping if you have to go shopping, because you haven't got any symptoms, so you're not infective yourself. And if you have to go to your doctor for tests and the doctor has asked you to come in for tests, you're allowed to do that. But if you have any symptoms, if you have a cough or temperature, or anybody in the house has got a cough or a temperature, then absolutely not. You should stay at home.
तो फिर अगर आपका कोई अपॉइंटमेंट है तो आप अपने जहां पर अपॉइंटमेंट है, जिस भी क्लिनिक में, चाहे वो नर्स के साथ, मिडवाइफ के साथ, हॉस्पिटल में, जीपी में, उनसे फोन करें, उन्हें बताएं कि मेरा अपॉइंटमेंट है, अब मुझे क्या करना है, तो वो फिर आपको बताएंगे कि इस अपॉइंटमेंट की जगह अब हमें क्या जरूरत है। और ये थोड़ा सा मान के चलें कि बहुत सी जो रूटीन केयर है, जो ऐसी चीज है जो अभी आज के लिए इमरजेंसी नहीं है, अर्जेंट नहीं है, तो अब वो हमने सुना है कि सारे जो रूटीन ऑपरेशन थे वो कैंसिल हो रहे हैं। रूटीन केयर आपकी प्रैक्टिसेस में, आपकी सर्जरी में, ऑलमोस्ट ऑल सर्जरीज ने अब मरीजों से कहना शुरू कर दिया है कि आप प्लीज सर्जरी में मत आइए, डोंट कम टू द सर्जरी, और अगर आपको जरूरत है, मेडिकल एडवाइस चाहिए, तो वो फिर आप पहले फोन करें, आपसे फोन पर वहां पर कोई नर्स या डॉक्टर या स्टाफ कोई आपसे बातचीत करेगा, और फिर आपको या तो फोन पर एडवाइस दी जाएगी, और अगर लगेगा कि आपको कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, और आपको आज ही डॉक्टर को देखना जरूरी है, तब आपको कहा जाएगा कि आप सर्जरी में आकर दिखाएं। लेकिन रूटीन प्रॉब्लम्स के लिए ये इसकी सुविधा अब नहीं है। सिक नोट्स के लिए कहा जा रहा है कि हम लोग अल्टरनेटिव्स देख रहे हैं कि किस तरह हम सिक नोट अगर किसी को चाहिए तो उसको ईमेल कर सकते हैं, आपको और कोई पेपर वर्क, कोई लेटर चाहिए तो वो आपको दिया जा सकता है। आपके रूटीन की हर साल मेरा ब्लड टेस्ट होता है, हर साल मेरा एस्मा चेक होता है, डायबिटीज चेक होता है, तो अब वो सब के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये पोजीशन थोड़ी कंट्रोल में नहीं आती है।
ओके, टॉक अबाउट डायबिटीज, फातिमा मैसेज अ शॉर्ट व्हाइल अगो, वन ऑफ आवर लिसनर्स सेइंग, गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम इन माय 50s एंड डायबिटीज विद इंसुलिन patient, can I go to work even if I don't have any symptoms?
No, absolutely not. So I think diabetes, and indeed I've mentioned the other illnesses as well, you should stay at home, and you should make sure this is to look after yourself. It is not because you're putting others at risk, but if you've got diabetes, the chances of you picking up something from the outside is going to be high. And secondly, unfortunately, if you have an underlying condition like diabetes or asthma or heart problems, and you do pick up something outside, your case is likely to be a bit worse than the normal person's. So please stay at home. Please work from home. And even if you have appointments at the doctor's, Rajiv will tell you that all our surgeries now are asking, even if you're coming in for a routine visit, we are asking the patients on the phone, sometimes by messaging, that do you have any symptoms of a cough? Do you have a temperature? Do you have any shortness of breath? Because if you do, don't come in for the simple blood test. We will sort you out by phone. So okay. We will call you back. Okay.
Great. Another question about face masks. How helpful are they? And do we all need one?
I think that's a difficult question.
In Hindi, please.
Yes. Yeah. मुश्किल है थोड़ा सवाल क्योंकि अभी तक लोग कह रहे थे कि ये एक टाइप का जो फेस मास्क है वो अच्छा है और दूसरे अच्छे नहीं है ऐसा कोई एविडेंस है नहीं ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे वो बता जा सकता है कि आप फेस मास्क पहनेंगे तो आपकी आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा इस फेस मास्क से सो बेहतर है कि अगर जो आप किसी से दो मीटर दूर रहे तो उससे आपको ज़रूर प्रोटेक्शन मिलेगा तो आपको फेस मास्क पहनना हो या ना पहनना हो लेकिन लोगों से दूर रहिए 2 meter.
Okay. There's a question also, someone wants to remain anonymous. If a person is ill and they have our shopping with them, can we pick our shopping from them from outside? So if first someone else has got, you know, a fever or some kind of symptoms.
जी हाँ क्योंकि हमने अभी जैसे बताया कि अगर जो आपको बीमारी हो आप घर पे रहिए लेकिन अगर जो आपको खाना चाहिए किसी कोई तो आएगा आपको खाना देने के लिए या कोई आपके पास से कुछ लेने के लिए आ जाए तो बेहतर है कि आप वो खाना या जो भी हो बाहर रखे और वो जिसको आना हो या तो आपके लिए खाना रखते या आपकी जो कोई चीज है उनको लेनी है तो वो ले जाए लेकिन दरवाजा खुला करके उनके साथ बात मत करना.
I also want to ask you about general hygiene. Now, we know, obviously, wash your hands for 20 seconds with soap or use a sanitizer if you're, you know...
And you have to sing Barbar Dinya.
Barbar Dinya, yeah. is there anything else that they can do to kind of keep themselves clean and hygienic?
So, isme दो बातें हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन है तो दूसरों को आप होने से कैसे बचाएं तो उसके लिए अगर आपको छींक आती है या खांसी आती है तो आप टिश्यू का इस्तेमाल करें अगर मौके पर उस समय टिश्यू नहीं है तो कहा जाता है कि अगर आपने कोई शर्ट या जंपर वगैरह पहना हुआ है तो अपनी आस्तीन का इस्तेमाल करें अपनी स्लीव का कोहनी के पास उसके कोहनी में मुंह छुपाकर आप खांसें और बाद में फिर वो कपड़े आप बदल सकते हैं हाथ का इस्तेमाल ना करें और टिश्यू को आप फौरन ही बिन में डालें और उसके बाद फिर अपने हाथ धोएं हाथ जैसा कि बार बार कहा जा रहा है हम फिर कहेंगे कि 20 सेकंड के लिए गर्म पानी से गुनगुने पानी से आप साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं और अगर आपकी छींक किसी मान लीजिए आप छींक देते हैं और किसी सरफेस पर होता है तो उसे आप अल्कोहल जेल से साफ कर सकते हैं जो लोग बचना चाहते हैं कि हमें दूसरों से ना हो तो एक तो ये कि सोशल आइसोलेशन की बात तो हम कर ही रहे हैं आप 2 meter दूर होकर बात करें लोगों से और आप भी अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो भी आप अपने हाथ लगातार धोते रहें आप किसी सरफेस को टच करते हैं जहां पर आपको लगता है कि किसी बीमार ने छींक दिया हो सकता है या खांस दिया हो सकता है तो फिर आप अपने हाथ धोने की जरूरत है और मुंह को अपने टच नहीं करना है ज्यादा तो हम लोग किसी ने पीछे कहा था कि कोई सर्च लोग अजीब अजीब चीजों पर सर्च करते हैं किसी ने की है कि एक आदमी 1 minute में शायद 12 बार या व्हाटएवर द नंबर वाज अपने चेहरे को हम लोग टच करते हैं तो अभी आदत है इसे रोकना बड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि अपने हाथों से अपने मुंह को और अपने चेहरे को आप बार बार ना छुएं तो उससे ये वायरस के फैलने में आपको रोकथाम
अगर आपको रुमानी अंदाज है तो किसी और का चेहरा भी टच मत कीजिए
जी you talk about hygiene because clothing is another thing as well and
sure.
Hand towels just the cloths yes. that you use in the kitchen and bathrooms what about them and how often should you be changing them
so I don't think we've got any clear advice on this mm-hmm. I think within a household clearly you need to make sure that you are doing the wiping of the surfaces washing your hands if you're doing that regularly then clearly the towels at home and everything else will be protected too I would suggest changing the towels possibly twice a day because if you're looking after yourself anyway, then the chances of you contaminating your towels is going to be very low. All that changes completely if you're staying with somebody or you yourself have any symptoms. Once you've got symptoms, I think you need to isolate yourself completely. You need to be in your room. You need to have your own towels. You need to have your own linen, everything else, and you change it as often as you can. But you make sure that those towels, once you've used them, are kept away and obviously laundered separately. So you have your own personal items.
तो ये थोड़ी सी गाइडलाइंस हैं इस पर NHS 111 की वेबसाइट पर कि क्लीनिंग और लॉन्ड्री का क्या करना है. तो आपने कोई स्पेशल आपको क्लीनर्स खरीदने की, वैसे तो बाजार में कुछ बचा भी नहीं है, लेकिन आपको उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा पैसा या एफर्ट करने की जरूरत नहीं है. आपके जो नॉर्मल डिटर्जेंट हैं, आपकी जो नॉर्मल ब्लीच जो आप घरों में रोज इस्तेमाल करते हैं, उसी से आपको घर की सफाई भी करनी है. आपके जो टिश्यूज हैं या आपके क्लोथ्स जो आप फेंकना चाहते हैं, जो आप धोना नहीं चाहते हैं, जितना भी डिस्पोजेबल सामान है उसे आप बैग में रखें, रबिश बैग में, और फिर उस बैग को कहा जा रहा है कि एक दूसरे बैग में फिर बांधें, एक बैग को दूसरे बैग में उसे अच्छी तरह से बांध दें और बिन में ना डालें उसे. 3 दिन तक कहा जा रहा है कि आप उसको 3 दिन तक घर में ही एक कोने में पड़ा रहने दें. अगर आपने अच्छे से पहला बैग भी बांध दिया है, दूसरा भी बांध दिया है, तो कोई स्मेल वगैरह आने की कोई गुंजाइश नहीं है. इसकी वजह यह है कि उस 3 दिन में उम्मीद की जाती है कि वो जो वायरस है वो अपने आप ही में मर जाएगा. वायरस जो है शरीर के अंदर तो जिंदा रहता है, बढ़ता है आगे, बाहर डेड सरफेस पर वो ज्यादा दिन चलता नहीं है, तो वो 3 दिन में अपने आप मर जाएगा. आपका जो बाकी घर का कूड़ा और जो रबिश होता है, वेस्ट होता है, उसको आप बिन में डाल सकते हैं बाहर. जो आपका ये जुकाम के जो तौलिए या इस तरह की टिश्यूज वगैरह आप फेंक रहे हैं, उसे आप 3 दिन घर में रखें. कपड़े धोने के लिए आप नॉर्मल अपना वॉशिंग मशीन में जैसे आप धोते हैं, नॉर्मल साबुन से, नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर से आप उसको, कोई स्पेशल चीज की जरूरत नहीं है. अगर कोई बीमार है उसका कोई तौलिया है और आपका तौलिया है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो आप इकट्ठा धो सकते हैं, धुलने में वो क्लियर हो जाएगा. उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उन कपड़ों को अलग रखने की जरूरत है. गंदे अगर कपड़े हैं, गंदी लॉन्ड्री है, तो उसको आप जैसे हम लोग ज्यादा हिलाए नहीं, उससे पानी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पानी वो पूरे में फैलेगा. कुछ लोगों के पास अगर वॉशिंग मशीन नहीं है या खराब पड़ी है, तो आप उस लॉन्ड्री को रखें घर पर बैग में बंद करके, और जब आपके जो सेल्फ आइसोलेशन का जो पीरियड है 14 दिन का वो ख़त्म हो जाए, उसके 3 दिन बाद फिर अगर आप बाहर लॉन्ड्री में या किसी के दूसरे के घर जाते हैं, तो आप उसको 3 दिन, जब आपका क्लियर हो जाए उसके 3 दिन बाद उसको लेकर जाएं.
Okay.
तो ये सफाई के बारे में.
That's very useful. Doctor, also wanted to ask you, is a question that's come in. I know we've been talking about symptoms generally, but bad nausea, sore throat, is that also a sign of coronavirus? I know it's seasonal at this time of year anyway, sure. But is this...
So in the absence of a temperature, in the absence of a cough, in the absence of shortness of breath, it's unlikely. But that doesn't mean it isn't. So I would suggest if you're feeling unwell, once again, I would take the precaution of isolating yourself. Because this time it's much better not to take the chance that it might develop into something. So you might start off with sickness today, but actually it could develop into a cough 2 days later. And you're infective when you've started your symptoms. So it's better if you then isolate yourself.
Okay, that's okay? good.
And social distance, so even, you know, even as a very first case scenario and you can't isolate yourself, please make sure you stay 2 meters away. I made a joke about touching people's faces, but actually it's really important. It's very hard when you meet somebody not to shake hands. It's very hard when you meet somebody you know not to give them a hug sometimes. Mm. But actually now, however weird it seems, stay away. Stay away 6 feet, do your namastes or whatever else, and just hope that people understand that you're not trying to be unfriendly.
चलिए लौट कर आते हैं हम, और इस तरफ हमारे सामने इस समय, जैसा कि आप जानते हैं, सबरस रेडियो पर हमारे पास हमारे दो मेहमान हैं, डॉक्टर राजीव वाधवा तो मेंबर हैं हमारे, और प्रोफेसर मोहर रोशन जी. तो हम इनसे जो बातचीत कर रहे थे, बातचीत का सिलसिला जहां छोड़ा था वहीं से हम इसको पिक करने वाले हैं. तो आपसे जानना चाहते हैं अब हम केवल इतना कि अगर किसी को लगता है कि उसको मतलब इस चीज से गुजरना पड़ रहा है, उसको ऐसे सिम्टम वगैरह महसूस होते हैं, या उसको हो गया है कोरोना वायरस, उसको हो गया है, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं?
जी अंबर जी, ये बहुत जरूरी है. तो इसमें अगर आपको लगता है कि आपको खांसी है और बुखार है, और आपको शक है या शक नहीं भी है कि ये कोरोना वायरस है या नहीं है, तो आपने बहुत जरूरी काम ये करना है, सबसे पहले कि आपने अपनी जीपी सर्जरी में फोन नहीं करना है, आपने बिल्कुल भी अपनी जीपी सर्जरी में नहीं जाना है, आपने कैजुअलिटी में, A&E में नहीं जाना है, आपने किसी भी वॉक इन सेंटर में या अर्जेंट केयर सेंटर में, कहीं भी किसी भी क्लिनिक में आपने नहीं जाना है. आपको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, इसमें कोई रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं है कि हमें हो गया है तो हम डॉक्टर को रिकॉर्ड में लिखवा दें कि हमको हो गया है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आपको 111 की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो सिर्फ आप सेल्फ आइसोलेट करें, ना सिर्फ आप बल्कि आपका पूरा परिवार। 2 हफ्ते तक आपको घर पर रहना है, बाहर नहीं निकलना है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए कोरोना वायरस के बारे में, या आपको लगता है कि मेरी तबीयत और ख़राब हो रही है, या आप 2 हफ्ते हो गए हैं अब भी ठीक नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं, तब भी आपने अपने जीपी को फ़ोन नहीं करना है, इमरजेंसी में नहीं जाना है, किसी क्लिनिक में नहीं जाना है, तब आपने NHS 111 की वेबसाइट पर जाकर, और ये बहुत ज़रूरी है, वेबसाइट पर जाकर आपने इसकी सारी जानकारी लेनी है। उसमें वहाँ पर क्वेश्चनेयर हैं जहाँ पर आपको बताया जाएगा, और अगर उस क्वेश्चनेयर के बाद वेबसाइट पर उनको लगता है कि आपको वाकई और मदद चाहिए या आपको किसी डॉक्टर को दिखाना है, तो वो आपको बताएंगे कि अगला स्टेप क्या है। आपको जीपी सर्जरी में नहीं जाना है। 111 का फ़ोन का इस्तेमाल भी नहीं करना है। आमतौर पर हम लोग कहते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो आप 111 को फ़ोन करें, लेकिन 111 की जो सर्विस है वो नॉर्मल टाइम के लिए है। तो अगर वो सर्विस मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1000 कॉल पर डे के हिसाब से वहां पर लोग बैठे हैं, स्टाफ है और उसको मैनेज कर रहे हैं, और आजकल 10000 कॉल जा रही हैं, तो वो भी बिल्कुल कोलैप्स के ऊपर है वो सर्विस, इतनी ज्यादा उसकी डिमांड है। तो आपने 111 को फोन भी नहीं करना है। फोन आप सिर्फ तब करें अगर किसी वजह से आपके पास इंटरनेट चल नहीं रहा है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, या आप इंटरनेट पर अंग्रेजी में बातचीत नहीं कर सकते हैं, तब आप भले ही 111 को फोन करें। मान के चलें कि 111 पे मैंने उस दिन किया था दूसरी किसी वजह से, 30-40 मिनट की वेट है उसके ऊपर, और आप अगर अननेसेसरी करेंगे तो आप उस वेट को दूसरों के लिए और बढ़ा रहे हैं। तो प्लीज आप वो नहीं करें जी। तो ये आपने
अभी पहले किसी श्रोताओं ने, सुनने वालों ने थैंक यू किया था जीपीज को, उसके लिए बहुत शुक्रिया
जी।
लेकिन हमें भी आपके पास से हेल्प चाहिए, और जैसे डॉक्टर राजीव ने कहा है, ये जरूरी है कि आप डॉक्टर को इस्तेमाल करें, ठीक से इस्तेमाल करें, और 111 को भी ठीक से इस्तेमाल करें। वो आपको बताए कि कैसे किया जाता है
जी।
लेकिन अगर जो सिर्फ आपको मामूली जुखाम या खांसी या बुखार मामूली सा नहीं है
जी,
अगर जो आप बहुत बीमार है तो फिर जरूरी है कि आपको कोई मदद की जरूरत, तो फिर आप जीपी को फोन कर सकते हैं या 111 को फोन कर सकते हैं। वो जो आप खास बीमारी हो तो जरूर कीजिए, ऐसे नहीं कह रहे कि कोई बीमार हो तो कोई बेहतर होकर पे कुछ नहीं किए, लेकिन अगर जो सिर्फ खांसी हो, थोड़ा सा बुखार हो, पैरासिटामोल से नीचे आ रहा हो
जी,
तो आप किसी को डिस्टर्ब मत कीजिए, हो सके तो जितना वो 14 डेज काट दीजिए घर पे
जी। यहाँ पर 2-3 सवाल और हैं जो कि हमें आपसे जल्दी जल्दी पूछने भी हैं। एक तो रमजान के बारे में थोड़ी बहुत तो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जो रमजान के दौरान एक सबसे बड़ी बात जो होती है वो सभी जानते हैं, रोजे रखते हैं हमारे मुस्लिम भाई बहन, तो उन रोजा रखने वालों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई सलाह उनके लिए, कोई टिप, कोई एडवाइस
जी? क्योंकि अगर जो आमतौर पर अगर जो कोई ठीक हो, मतलब उनको बीमारी ना हो, ना तो कोई जुखाम है, ना बुखार है, ना खांसी है, ना सांस की बीमारी है, या फिर आपके डायबिटीज ऐसे कोई बीमारी नहीं है, जैसे हर साल आप रोजे रख सकते हैं तो आप जरूर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो कोई बीमार हो जाए तो फिर मजहब भी आपको बताएगा क्या करना है, लेकिन हम भी आपको डॉक्टर के जरिए बता रहे हैं कि अगर जो बीमार हो तो शायद इम्पोर्टेंट कि आप उस दिन रोजा ना रखें। और क्योंकि आपको पानी पीने की जरूरत पड़ेगी, पैरासिटामोल लेने की जरूरत पड़ेगी, 4 बार दिन में अपने आप का ख्याल रखना पड़ेगा, तो ये मुश्किल रहेगा अगर जो आप रोजा रखे तो। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कभी कभी बहुत सी हल्की बीमारी हो तो रोजा रख देते हैं, लेकिन अगर जो आप बहुत बीमार तो जरूर प्लीज रोजा मत रखिए, आपको मजहब भी इजाजत नहीं देता आपकी जिंदगी को खतरे में डालने में,
या क्योंकि उसकी तो माफी होती है जी। और एक और सवाल है यहाँ पर, लिसनर का सवाल है, नाम इनका तो हम नहीं लेंगे, लेकिन डेवेंट्री से भेजा इन्होंने। इनका कहना है कि आई वुड लाइक टू आस्क दैट आई वर्क इन अ सुपरमार्केट ऑन चेकआउट्स, माय पेरेंट्स आर एज 90 and 84, शुड आई गो टू सी देम एज आई एम अ बिट कंसर्न्ड एज आई वर्क इन सुपरमार्केट?
एक्चुअली अच्छा सवाल है
जी।
अगर जो वो ठीक है, मतलब उनको कोई बीमारी नहीं है, जैसे सवाल पूछा है, उनको बुखार नहीं है, उनको खांसी नहीं है, और उनके पेरेंट्स भी ठीक है, तो जरूर जाके मिल सकते हैं, लेकिन अगर जो हो सके तो थोड़ा दूर रहिए उनसे। अच्छा
जी।
क्योंकि आप अगर जो आपको शायद आपने कुछ इन्फेक्शन ली है तो उनको आपके पेरेंट्स को तो नहीं देनी है, तो मतलब थोड़ा दूर रखे बात कीजिएगा। लेकिन अगर जो आपको कोई सिम्टम्स है, आपको खांसी है या बुखार है, या आपके पेरेंट्स को खांसी या बुखार है, तो फिर नहीं चाहिए प्लीज मिलने के लिए। आजकल तो फोन पे भी वीडियो हो सकता है, बात हो सकती है, देख भी सकते हैं, तो बेहतर है कि उसका इस्तेमाल कीजिए
जी। इसमें अंबर जी मैं और ये बात जोड़ना चाहूँगा, न सिर्फ इनके सवाल के जवाब के बारे में बल्कि थोड़ा और बाहर भी जाते हुए, कि ये जैसा हम सब लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी एक मुसीबत, विपदा, क्राइसिस जिसे कह सकते हैं, इमरजेंसी पूरी दुनिया के सामने आई है। पिछले कई सालों में हमने ऐसा नहीं देखा है। NHS के ऊपर खास तौर पर कहा जाता है कि 1947 से 1947 से शायद सबसे बड़ी क्राइसिस होने वाली है NHS के लिए, हमारे पूरे देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो इसमें ये वॉर लाइक सिचुएशन है कि जैसे कोई जंग इस समय हो रही है इस बीमारी के साथ, और इसमें हम तभी इससे जीत सकते हैं जब हम एक साथ एज ए यूनिट एक इकट्ठे इसमें काम करें। और इसमें हमें अपना ध्यान भी रखना है, बहुत ज़रूरी है अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप अपना ही ध्यान नहीं रखेंगे आप ही बीमार हो जाएंगे तो दूसरों का क्या करेंगे। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आपको दूसरों का भी बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ये देखना है कि आप प्लान करके चलें कि अगर ये बीमारी और बढ़ती है, जिसकी उम्मीद है कि और बढ़ेगी, और आपके घर में कितने मेंबर हैं, कौन कहाँ रहता है, आपके पेरेंट्स अगर आपसे दूर रहते हैं, या आप अगर बुजुर्ग हैं, आपके बच्चे दूर हैं, आप अकेले हैं, तो कोई प्लान बनाकर चलें कि मुझे अगर बीमारी होगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा, मेरे घर खाना कौन पहुंचाएगा, और अगर दूसरे को होगी तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं अगर मैं इस काबिल हूं। तो ये नेटवर्क, ये आप हम लोग व्हाट्सएप तमाम तरह के ग्रुप्स बनाते हैं, आप इसमें अपने मोहल्ले में, अपनी सड़क पर, अपनी लेन में, अपने क्लोज में आप ऐसे ग्रुप्स बनाएं जिसमें आप एक दूसरे के संपर्क में रहें कि अगर एक को होता है तो दूसरा उसकी क्या मदद कर सकता है, ड्यूटीज उसमें बांट लें और इमरजेंसी के लिए तैयार रहें। जितना आप इसके लिए तैयार होंगे, प्लानिंग करके चलेंगे, आगे अगर वो मौका आता है तो आपको उतना ही कम नुकसान होगा। उतना
ये आपने बड़ी अच्छी बात की रजवी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये वायरस जो है बहुत खतरनाक है और बहुत सी चीजें हमारे से ले गया है, लेकिन एक चीज जो दे गया है वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मेरे करीब जो औरत रहती है वो मेरे ख्याल में शायद 75 ईयर्स ओल्ड होगी, मेरे से फिट है, रोज गोल्फ खेलती है, लेकिन क्योंकि शायद उनको ये बीमारी हो जाए तो उन पे ज़्यादा खतरा बीतेगा। तो मैं रोज़ उनको फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि आप ठीक है, कुछ चाहिए, बाहर से कुछ खाना चाहिए, ऐसा कुछ है, तो फिर हम ख्याल रखते हैं।
ओके, अब हमारे पास क्योंकि कुछ और सवाल जो हैं लास्ट मोमेंट जब आने शुरू होते हैं तो तेजी से आने शुरू होते हैं, मैं 2-3 सवाल एक साथ आपके सामने रख देती हूँ एक एक करके, ताकि आप उस हिसाब से, क्योंकि टाइम भी अब बहुत कम रह गया है, हमें जवाब भी जल्दी जल्दी देने होंगे। तो पहला सवाल ये है कि एज देर आर देर एनी अप्रोचेज दैट वन कैन टेक टू बूस्ट द इम्यूनिटी against this virus, example food etc. और दूसरा जो सवाल है ये इनका पूछना है कि किडनी पेशेंट के लिए जो है आप क्या बता सकते हैं, what precautions can a kidney patient receiving hemodialysis at a hospital take?
और दूसरा सवाल पहले लूंगा कि वो आसान सवाल है
जी। okay.
अगर जो आपको बीमारी है, जैसे हमने पहले बताया, कोई भी बीमारी है तो बहुत खास बीमारी है किडनी की, तो वो पहले तो पहली बात है कि जो दवा लेते हैं वो लेते रहिए, जो सलाह उनको डॉक्टर से मिल रही है उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन खुद को सेल्फ आइसोलेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन लोगों को बहुत खतरा है, अगर जो बीमारी हो जाए उनको तो बहुत खतरा हो सकता है। अच्छा, दूसरा सवाल,
पहला सवाल लॉन्ग टर्म में कि अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, अगर आपको कोई बीमारी है डायबिटीज या जो भी, उसका अच्छा कंट्रोल, तो वो तो पूरी लाइफ का है। लेकिन आज हम ऐसा क्या करें कि कल हमें कोरोना वायरस की बीमारी ना हो? इन शॉर्ट टर्म में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मैं आपसे कहूँ
आपको ऑरेंज जूस पी सकते हैं,
कि आप ज्यादा कुछ खा लें या कोई विटामिन ले लें या विटामिन सी ले लें, उससे मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई मदद आज होने वाली है। हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल वगैरह वगैरह लॉन्ग टर्म में आपकी मदद करेगा, बट अब इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल।
Let's also talk about the elderly. Now, supermarkets is one thing. I know there's some people that are, been complaining about certain supermarkets, not supermarkets, but local stores, been complaining about, prices going up. Mm-hmm. We'll leave that aside. But we're talking about certain slots that are dedicated to the elderly.
Yes.
And the vulnerable people that supermarkets have now opened this week.
That's very good step.
Open an hour slot.
That's right,
every day.
Yes.
That's right.
So would you advise for them to go at that time?
If they're well, absolutely. So if they don't have, remember, the cough, the shortness of breath, the temperature, then absolutely, I think it's a very good idea to go out and do your shopping at that time. If you have a healthy relative, a son, daughter who can take you, that's fine too. So they don't need to isolate themselves that much. But if once you have any symptoms, then it's best to isolate yourself, not go out at all. Okay.
Yep. And a question also from Daksha as well, who wants to know about her daughter. She's 9 years of age, and it's quite a lengthy message, but I think the gist of it is that she's had some reddishness inside her throat. She's seen a GP, a nurse practitioner, she's seen, and that's what they've diagnosed. So there's nothing to worry about. Is that also a sign, is it a symptom for coronavirus?
I think if somebody's seen her already and suggested that they haven't got a coronavirus, I would suggest that she's probably reasonably well. She's probably not got a temperature. She's probably got no other symptoms, which suggested to the nurse practitioner that she had any evidence of coronavirus. I would follow that advice. Again, remember, everything is for a day. If, God forbid, tomorrow she develops a cough or she develops a fever, then things are different, and you need to follow the advice that we gave you earlier for that time.
And testing kits.
So there is no testing kits available for general public. There are some in hospital. वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं और रात को वहाँ पर रह रहे हैं. उनके लिए टेस्ट है. बाकी लोगों के लिए कोई टेस्टिंग नहीं है. सो प्लीज टेस्टिंग के लिए आप हॉस्पिटल मत जाएं, फोन मत करें, जीपी सर्जरी में मत आएं. ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है.
लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर जो टेस्टिंग होती ज़्यादा, तो फिर हम लोगों को कह सकते कि आपको घर 14 डेज के लिए ज़रूरी नहीं रहना, शायद 7-8 दिन के लिए भी ठीक होता. तो गवर्नमेंट कह रही है हमें कि अगले 2-3 दिन या एक हफ्ते में बहुत से टेस्टिंग किट वो प्रोवाइड करेंगे, और शायद हम फिर प्राइमरी केयर में या कहीं कम्युनिटी सेंटर में वो टेस्ट कर सकेंगे. लेकिन मेरे ख्याल में अभी तो बिल्कुल नहीं,
आज की डेट में नहीं,
आज की डेट में तो नहीं है. और ऐसा कोई टेस्टिंग किट वैलिड भी नहीं है. ऐसे भी मत कीजिए कि आप कहीं और से, किसी ने आपको बताया ये यहाँ से टेस्टिंग किट मिलता है, ये ले लो. ऐसा कोई एविडेंस बेस्ड टेस्टिंग किट है नहीं. तो मतलब आप उस पर ध्यान करेंगे तो शायद उसका रिजल्ट भी गलत होएगा. तो बेस्ट है कि आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, क्योंकि NHS बहुत काम कर रही है कि टेस्टिंग किट और बढ़ाए मैन्युफैक्चरिंग.
एग्जैक्टली. एंड फ्रॉम देयर आई वुड लाइक टू से कि इसकी एडवाइस जो है, रोज नई न्यूज आ रही है, रोज नई रिसर्च आ रही है, नई रिपोर्ट्स आ रही हैं. तो आपको अप टू डेट रहने के लिए जो सबसे ज्यादा वैलिड जगह है वो है NHS की, NHS 111 की साइट. वहां पर पूरे 2-3 पेज में सिर्फ कोरोना वायरस की बात है. तो आप अपने गूगल में NHS 111 टाइप करें, NHS की साइट पर जाएं. बहुत अफवाहें फैली हुई हैं. आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर दिन में 500-500 मैसेज आ रहे हैं. उसमें कोई भी, जिसको कोई वीडियो लगता है तो वो आगे बढ़ा देता है, बिना देखे बढ़ा देता है. तो प्लीज़ इस मौके पर आप अफवाहें फैलाने में अपना साथ ना दें, अनलेस कि वो एडवाइस NHS से आई हुई है इस कंट्री में, या जिस देश में भी आप हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट या हेल्थ की जो वेबसाइट है, अगर उसकी एडवाइस नहीं है, प्लीज़ आप उसको आगे बढ़ाना बंद करें. इसकी जो अफवाहें हैं उनको फैलाना बंद करें. व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस भेजना बंद करें. आप व्हाट्सएप पर ये पूछें लोगों से कि उनका क्या हाल है, आप किसकी क्या मदद कर सकते हैं, बजाय इसके कि स्पेन से एक मैसेज आ रहा है मैं आगे बढ़ा दूँ 200 लोगों में, या चाइना से एक मैसेज आया है मैं आगे 500 लोगों को दे दूँ. इस समय ऑलरेडी लोग बहुत टेंस हैं. आप जितना कम इसको फैलाएंगे उतनी ज़्यादा मदद होगी इसमें
जी. और आप अगर जो किसी के पास से मैसेज भी आ रहे हो तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक बात जो इंटरनेट पे अभी सबसे जो बुरी बात है वो फेक न्यूज़ है. कहीं से भी खबर आ सकती है, कोई भी खबर आ सकती है. आप उस पर ध्यान न दे इतना.
There's a lot of lockdown on Friday. There's been all this. There's been a lot of WhatsApp messages.
I wish there was a lockdown on WhatsApp for a little while. It'd be quite good.
Yeah, me as well.
So, जो भी आपको एडवाइस चाहिए, आप 111 की साइट पर जाएं, और जिनको चाहिए, और जागरूक रहना, अवेयर रहना बहुत जरूरी है, और आप जरूर उसको रोज चेक करें, दिन में एक बार या दो बार, हर 5 मिनट पर नहीं, क्योंकि आप नहीं तो स्ट्रेस्ड हो जाएंगे. तो कोरोना वायरस आपको हो ना या हो, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है. तो आप जो है दिन में एक बार या दो बार 111 की वेबसाइट पर जाकर देखें कि लेटेस्ट क्या है, कल से आज कुछ चेंज हुआ है तो वो क्या है, और उसको फिर माने. और जो भी न्यूज़ है, आज मेरे पास एक न्यूज़ आई कि ये गाइडेंस है, ध्यान से उसको देखा तो वो 8 दिन पुरानी गाइडेंस थी. किस काम की है वो? किसी काम की नहीं है. तो लोगों को तो जैसे आता है वो फिर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं. तो प्लीज़ आप 111 की साइट पर लेटेस्ट जानकारी लें, उसमें सब कुछ है. और ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, और अंबर जी जैसे हमेशा कहती हैं अपने प्रोग्राम के एंड में, अपना ध्यान रखें और अपने साथ ही दूसरों का भी ध्यान रखें. दिस इज रियली अ सीरियस सिचुएशन, इट इज अ वॉर लाइक भूपा पाएंगे.
डॉक्टर राजीव, आई नो यू गाइस इन अ रश, आई नीड टू आस्क यू वन फाइनल क्वेश्चन बिकॉज़ वी हैवंट टच्ड ऑन इट, दैट्स अबाउट चिल्ड्रन. एज यू नो स्कूल्स विल बी क्लोज्ड फ्रॉम फ्राइडे. लेट्स क्विकली जस्ट टॉक अबाउट चिल्ड्रन एंड व्हाई दे आर नॉट बीइंग सो इंपैक्टेड एट द मोमेंट बिकॉज़ इट्स मोर अबाउट द एल्डरली एट द मोमेंट.
सो चिल्ड्रन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बच्चों के ऊपर इसका असर कम हो रहा है, या तो वो बीमार हो ही नहीं रहे हैं, सिम्टोमेटिक उनको जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शन हुआ भी है तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. जिनको इन्फेक्शन हो भी गया है, बीमार भी हैं, तो वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है. लेकिन उसमें डर ये होता है कि उनको तो ठीक है लेकिन बीमारी फिर भी उनके अंदर है, तो वो आगे उसको फैला सकते हैं. तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि स्कूल बंद हो गए हैं तो ये नहीं कि आप बच्चों को अपने उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दें जो बीमार हैं, कि भाई उनका कोई ध्यान रखे. तो वो बच्चे तो ठीक रहेंगे लेकिन उनसे अगली जनरेशन को प्रॉब्लम हो सकती है, वो आगे उसको बढ़ा सकते हैं. तो बच्चे फ्री हैं तो जो पार्क नहीं जाना है, सिनेमा वगैरह मुझे तो लगता है कि अगले कुछ दिनों में वैसे ही बंद होने वाले हैं, लेकिन ना भी हो तो चलो आपको सिनेमा ले जाएं, रेस्टोरेंट ले जाएं, आप प्लीज़ घर में रहें और ज़्यादा मिले जुलें. ये भी नहीं कि अब 10-15 बच्चे मिलकर वो पूरा स्लीप इन का प्रोग्राम बना रहे हैं. ये सब आई थिंक एज ए सोसाइटी हमें थोड़ा सा कुछ महीनों के लिए,
गवर्नमेंट जानते थे कि ये सबसे मुश्किल काम होगा कि बच्चों को स्कूल से भी बाहर निकाले जाए और फिर उसको कहे कि बाहर भी मत जाओ. तो इसलिए वो आखिर पे,
इसीलिए उसको उन्होंने
आइसोलेशन उन्होंने आखिर पे रखा था.
जितने दिन रोक सके उसको रोका है लेकिन अब अंत में उन्हें करना पड़ा.
और रजीव की बात बिल्कुल सही है कि बच्चा ठीक भी हो तो बेहतर कि उनके जो अगर जो कोई बीमार रिश्तेदार हो, जैसे कि ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हो
या कोई प्रेग्नेंट लेडी है फैमिली में,
अगर जो प्लीज मत जाएं. से ज्यादा हो या बीमार हो या प्रेग्नेंट हो तो फिर उनके पास वो बेबी सिटिंग के लिए या केयर टेकिंग के लिए मत रखिए, अपने पास ही रखिए.
Brilliant. Thank you so much. I mean, I think we covered quite a lot there. And I just want to say thank you. I know during these difficult times, you know, you taking your time out to come into the studio to share the advice with the listeners. It means a lot. So, Dr. Rajiv Wadhwa, thank you so much for being part of this family.
Anytime.
I know you come in every Mondays. We'll be doing it a bit more often. We'll definitely get some more programs like this scheduled here on Sudbush Radio. And first of all, I'm meeting you, Professor. I've got to say it's been a pleasure having you. I know you've been here on Sudbush Radio before, but it has been a pleasure having you this evening here as part of this coronavirus. Special.
Likewise, thank you very much for having me here.
Thank you so much.
Thank you, Rajiv, for asking me to come.
Thanks much.
Thank you. And once again, saluting all the NHS workers, because I know you guys are doing an incredible job. I know you're not getting the appreciation and the love and the support from everyone else. And can I just say, everyone who is going to GP practices and going to any doctor surgeries, just be patient, yeah? We all need to be treated with a bit of dignity and a bit of respect, all right? So during these difficult times.
इमिग्रेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, थोड़ी एडवाइस उनसे लेंगे कि क्या किया जा सकता है किस सिचुएशन में. और हमारे मेहमान जो हैं ये हैं एक इमिग्रेशन सोलिसिटर और नाम है इनका हरजाब पंगल. तो हरजाब पंगल जी, थोड़ा स्वागत कर दें आप अपने स्टूडियो, बेशक फोन रहे.
वेरी वेरी वार्म
वेलकम टू यू. सत श्रीकाल.
हाँ जी, सारे मेरे वालों नमस्ते, सत श्रीकाल.
ते सारियां वल्लों तुहानू वी हरजाब जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चलो अज इसे बहाने तुहाडे नाल गल करन दा मौका मिल रहा है सानू.
चलो जी,
हां जी,
बहाने बनना सी. हां जी
हां जी, बस देख लो ऊपर वाला बना ही दिंदा कोई ना कोई बहाना. अच्छा चलो, हुन इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया नु परेशान करके रखिया, अत मचा के रखी इन्हें.
हां जी बिल्कुल जी, ते बहुत दुर्घटना ही
हां जी,
जिस दे विच रोज लोकां दा देहांत हो रहा, लोग बीमार हो रहे, किसी नस्ल नु नहीं देख रही जी, किसी कौम नु नहीं देख रही, ये किसी को बख्शती नहीं एंड ये बॉर्डर्स नहीं देखती एंड इसकी वजह से बहुत परेशानियां पैदा हुई.
हां जी, ते असी थवाडे कोलों हुन ए भी पूछना चाहंदे हां हरजाब जी, क्योंकि इस बारे तुहानू जिन्नी नॉलेज हैगी आ, इस थवाडे तों अलावा असी होर किसी नु सानू याद मतलब ख्याल भी नहीं आया कि किसी होर नाल असी गल करिए. एंड राज ने जिस तरह किया कि थवाडे नाल ही मतलब गलबात दा इंतजाम होया ते मैं तो बड़ी खुश हो गई. मैं कहा चलो मेरे नाल नाल साडे बहुत सारे लिसनर भी खुश हो गए कि थोड़ी बहुत जानकारी जो सानू चाहिए आ.
लोग जो पूछना ही पूछो.
हां जी, सवाल तो बहुत सारे ने, ते सब तो पहला सवाल जेड़ा लोग पूछ रहे ने, मतलब सारे सवाल जे वेख्या जाए ते कट्ठे ही आ रहे ने. ते जेड़े लोग मतलब जिन्ना ने टिकटां अपनियां लितियां हुईयां ने जान वास्ते किते, ते उन्हां दियां फ्लाइटां जो कैंसल हो रही हैं, ते ओ जानना चाहंदे कि उन्हां दा मतलब की उन्हां नूं रिफंड वगैरह मतलब मिल सकदा, ओ की कर सकदे ने.
देखो जी, उन्हां नूं अपनी एयरलाइनां नाल अप्लाई करना चाहीदा रिफंड लई.
हां जी,
ते उन्हां नूं ऑप्शन मिलेगा, या तां रिफंड दा मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइन, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣ. ਉਹ
ਹਾਂਜੀ,
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੇ. ਜੇ ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਰੀਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲੈਣ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣ, ਐਂਡ ਜੇ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਆ, ਜੇ ਸੋਚੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੂਗੀ ਆ ਲਓ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਵਾਪਸ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ?
ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੈਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆ ਰਿਟਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ, ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਲੋਅਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋਊਗੀਆਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 15 ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੈਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪਾਸ ਇਜ਼ ਅਵੇ ਔਰ ਕਾਮਸ ਡਾਊਨ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਡੈਡੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਜਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਿਆ ਫਸ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ 1800 ਪਾਉਂਡ ਖੜੇ ਪੈਰ ਇਕੋਨਮੀ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ, ਵਨ ਵੇ ਦੀ 1800 ਪਾਉਂਡ, 1800 ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਨੀ,
ਇਕੋਨਮੀ
ਨੋਰਮਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 1800 ਪਾਉਂਡ, ਉਹ ਵੀ ਵਨ ਵੇ।
ਹਾਂਜੀ,
ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਫਸ ਗਏ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਸੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੋਗਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਸਟ ਵਾਈਟ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਵੈਲ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ?
ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯੂਕੇ ਦਾ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੋਰਨਰ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਿਟਰਨ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ,
ਹਾਂਜੀ,
ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੱਲੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ,
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਛੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਲੈਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਫੋਰਨ ਐਂਡ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ। ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਅਵੋਇਡ ਇਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਰੀਫੰਡ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆ ਔਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਲੀ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਏਅਰਪਲੇਨ 'ਤੇ ਕੰਫਾਈਨਡ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹਲੇ।
ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਓ, ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ।
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰਜਾਬ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ
ਜੀ,
ਐਂਡ OCI ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਤਾਂ OCI ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਨ ਨਾ ਦਿਓ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਦਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ
ਓਕੇ
ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਣਾ
ਹਾਂਜੀ
ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲੈਸ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਐਮਰਜੈਂਟ
ਹਾਂਜੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਅੱਗੇ
ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ
ਹਾਂਜੀ
ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਪਣਾ
ਜੀ
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਰ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੋਆ ਚ
ਓਕੇ
2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਜੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ 1.5 ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲ ਲੱਭ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਕ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਡਨ ਆਪ ਟਰੈਵਲ ਮਤ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਆਪ ਸੋਚੀਏ ਮਤ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੋ ਅਭੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਖਤਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਗੇ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਵੋ ਕਹਿ
ਔਰ ਜੋ ਯੂਕੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਸੇ ਕੋਈ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਸੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਕਿਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ
ਯੂਰਪ ਕੇ ਬਾਰਡਰਸ ਅਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਏ
ਜੀ
ਤੋ ਯੂਕੇ ਸੇ ਜੋ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਯੂਰਪ ਕੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਈਯੂ ਵਗੈਰਾ ਤੋ ਬਾਕੀ ਯੂਕੇ ਕਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਭੀ ਖੁਲਾ ਹੈ
ਜੀ
ਸੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਆਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਵੋ ਆ ਸਕਤਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੇ ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੂੰ ਅਬ ਯੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ
ਜੀ
ਐਂਡ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਥਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੇ ਜਿਸ ਕੋ ਹਮ ਹਮ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਤੇ ਨਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਥੋੜੇ ਸੇ ਪੀਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਦੇਸ਼ ਜੈਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੇ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੈ ਮੈਂ ਜਬ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਥਾ ਤੋ ਸਭੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਾ ਹੁਆ ਥਾ ਔਰ ਗਲਵ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਥੇ 60% ਆਫ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਵਰ ਵੇਅਰਿੰਗ ਮਾਸਕ ਔਰ ਯੇ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਸਭ ਕੋ ਕਿ ਯਹਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਨਾ ਯਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ
ਹਾਂਜੀ
ਜਬ ਮੈਂ ਹੀਥਰੋ ਉਤਰਾ ਵਨਾ ਗੋ ਫਰ ਹੀਥਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਵ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਕੇ ਵੈਰੀ ਲੇਟ ਸੀਗੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ
ਹਾਂਜੀ
ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਸੋ ਇਹ ਸਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਲਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਯੂਕੇ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਫਲਾਈਟਸ ਬੈਕ ਸੋ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਐਕਚੁਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੀ ਜਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਟਕ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
ਹਾਂਜੀ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਹਾਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 15 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲਸ ਬੰਦ ਰਹੂਗੇ ਟਿਲ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਨਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ ਇੱਥੇ
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਜਨਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਆ ਕਾਫੀ ਵਿਹਲੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਿਸ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਟੀ ਵੀ ਪੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਕੀ ਤਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੋ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਐਡਵਾਈਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਪੈਨਿਕ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਬੋਰੇ ਆਟੇ ਦੇ ਲਿਆਓ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ 20 ਬੋਰੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਲਿਆਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਅਮਾਊਂਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ 20 ਪਾਉਂਡ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 20 ਪਾਉਂਡ ਕਿਲੋ
ਉਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਆ
ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਨੀ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮਾਰ ਜਾਣਾ
ਹਾਂਜੀ
ਹਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ 20 ਪਾਉਂਡ ਕਿਲੋ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਪਾਗਲਾਂ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਕਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਟੇ ਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਓ 40-40 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਲੱਗਿਓ ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹੋ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਾਰਜ ਗਰੁੱਪਸ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਮੇ ਬੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇ ਥੋੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰੋ ਸਿਆਣੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੱਖੇ 20 ਆਟੇ ਦੇ ਬੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕੌਲੀ ਵੀ
ਨਹੀਂ
ਆਟੇ ਦੀ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਵੇਅਰ ਐਵਰੀਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਟੁਗੇਦਰ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਬਚੋ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ 10 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਣੇ ਆ
I just want to say thank you so much. You know, it's been years since you've been last here on Subrush Radio.
Of course, such a
prominent immigration solicitor to have us, you know, giving us an update here for the, you know, on Subrush Radio. So thank you so much for that. Ajab, before, you know, I want to talk to you in English for a couple of things, just because there are listeners out there who may not understand Punjabi. First of all, there's a question I got here from Hitesh saying about cancelled ticket and refunds. Correct me if I'm wrong, but how do I understand this? The airport tax element, is it refundable fully? Because it is only chargeable if used, else can't get charged for it. So how does it work in terms of the kind of taxes, the airport taxes, and would anyone be entitled to a full refund that, you know, that includes the kind of airport tax?
That all depends on the airline you've travelled with and the government policy on airline tax. What you'd have to do is read the small print. So in every ticket sales terms and conditions, they usually have a website address where they say, right, read the terms and conditions. You have to go on that. It all depends. When you buy something from someone, essentially what you're doing is you're entering into a contract for a sale of an item.
Yeah.
Now that contract will have terms and conditions. So you have to read that, and every airline has a different policy. Those airlines who want to keep their goodwill, they're offering full refunds. But some airlines are notorious for not giving refunds, or only saying, well, hold on, you can only have a ticket and we'll give you a date for 6 months' time or when you can travel. So it all depends on the small print. Go to the airline's terms and conditions and it will be written there. They have terms and conditions for situations like this.
Okay, good. And we know that there's obviously restrictions in place. And Umber just mentioned it to you now, but just to kind of retrace it in English, we know that there's restrictions in place for travel now from the UK and, of course, from other countries as well, because even today, US, Canada, the border's been closed. So there is going to be a lot of closures elsewhere now. So say airlines, I mean, not all airlines have stopped flying yet. So is it still safe for people to travel, I mean, during these kind of unprecedented times?
Every government has said don't travel unless you have to. So what they essentially mean is that you shouldn't travel. However, if you really have to travel, then some airlines are operating and they're landing, but expect tickets prices to be extortionate.
That's right, yeah.
So my friend's dad, he didn't listen to our advice and he went to India last week. And he's tried to come back today and his airline has said, no, sorry, we're not flying. He's found out about an alternative ticket. You want £1,800 just for a common economy, one way from Delhi to London.
Mm-mm.
So £1,800 is standard. This is the prices that you should be expecting to pay. Everyone's trying. Unfortunately, instead of helping each other, there are people out there who are trying to take advantage of the situation. And it's ironic that these companies then ask the public for support, but in times like this, they're really trying to take advantage of the situation. So what I would say is don't travel. And all the airlines are saying it. Everyone is saying it. In fact, don't travel if you have to, unless you have to. And it really is, if it's a matter of life and death, then even then, if you want to go to India now, you're going to have to get a visa from the embassy. And the embassy will decide whether you'll be allowed to travel or not. But British citizens stuck in India or abroad, if they can get a flight back, then by all means you can. And the UK is still allowing British citizens back into the UK. However, and like I said, when you go to India, do expect to be screened and quarantined for 14 days. It's mandatory. So any foreigner landing in India, or even an Indian citizen going back to India,
mm-hmm.
will be kept in hospital for 2 weeks to make sure they're clear of the virus.
Mm-hmm. And the visa restrictions and the suspensions are in place till 15th of April, right?
Initially 15th of April, but if the virus situation gets worse, which many are predicting, then expect it to be on for longer. So Don't go about booking tickets for the 16th of April thinking, you know what, oh, it's one day, yeah, use a bit of common sense. Don't book your tickets yet for a few months down the line. We don't really know what's going to happen. This is an unprecedented situation. Hasn't happened before. It's no one to blame. You can't play a blame game. It's out of everybody's control.
Mm-hmm.
No one really wants this situation, but it's there. So please use your common sense and don't just say, oh, well, they said to the 15th and now I booked it for the 16th and they've extended it again.
Mm-hmm.
Everything is subject to change at a minute's notice.
It's true. I just want to say thank you so much. It has been pleasure
been really
having
good,
you. No, thank you.
I would love to be on.
Yeah, we should definitely, I know, because you're doing a lot of things for other radio stations. I thought, let's get you on Sunrush Radio as well, because it's been some time. Can I also ask you, there's a question also about, I don't know if you know about this, but so there's something that's come in. But what if anyone is going on holiday like Amsterdam by ship? What would you suggest?
Don't travel anywhere. Please don't travel anywhere. We all know what happens on boats and cruises, especially in relation to the virus.
Yeah.
This is where the first victims were, picked up, and people actually died on boats and cruises.
Yeah, yeah.
So come on, man, if you haven't got the message yet, then you're never going to get the message.
Yeah, no, I agree.
This is what I've got to say to the public, yeah, please, don't try and look for a loophole or a jagard, as we say,
no.
All here around it. best to stay safe in your house, keep your family safe. The last thing you want to do is have a fatality on a boat somewhere where a doctor can't reach you and none of your family can.
Yeah, I agree. No, thank you. That message just came in a short while ago. But thank you very much for your time again. And I will catch you again soon. You stay safe, Mr. HP. And I'll catch you soon, all right?
Thank you very much, Rod.
All right, take care. Thank you. Bye-bye.
Bye.
That's Hajar Bungle here on Sunrush Radio, making his kind of comeback here on Sunrush Radio under these very kind of strange circumstances we've got at the moment. Of course, the immigration solicitor. If you've got any questions that you want to send over for Hajar, do let us know, right, at studio@sunrushradio.com, or you can use our WhatsApp number on 07564 984152, and we'll definitely get him back on here on Sunrush soon.